ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 288 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 232 सदस्यों ने विधेयक के विरोध में मत डाले। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय देर रात तक विधेयक पर चर्चा हुई। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ ही वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुव्यवस्थित करना है। इसका उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना, वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय कायम करना और पक्षधरों के अधिकारों की रक्षा करना है। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार का भी प्रयोजन है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाना है, जिससे बेहतर वक्फ शासन और निर्णय लेने में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व हो। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह धारणा गलत है कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित देश है। इससे पहले दिन में विधेयक पेश करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है और यह केवल वक्फ बोर्ड से संबंधित संपत्तियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी भी मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है।
तो कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते हैं।
चर्चा में विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत और संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये विधेयक लाया गया है। बिहार और हरियाणा सहित देश के कई राज्यों, संगठन और लोग वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत कर रहे हैं। बिहार में पसमांदा मुस्लिम समाज के संयोजक डॉ फिरोज मंसूरी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि ये विधेयक पसमांदा मुसलमानों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। हरियाणा हज कमेटी के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर खुर्शीद आलम ने कहा कि वक्फ बिल से सिर्फ उन लोगों को परेशानी हो रही है जो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। संसद ने आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे स्वीकृति दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य भारत में विदेशी लोगों के आव्रजन, प्रवेश और ठहरने को विनियमित करना और आव्रजन कानूनों का आधुनिकीकरण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 6 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की 3री यात्रा है। प्रधानमंत्री कल बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैंतोगरतान शिनवात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका जाएंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर समान पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसके तहत उनके आयातित वस्तुओं पर 26% शुल्क लगाया जाएगा। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री ट्रंप ने कहा कि शुल्क पूरी तरह पारस्परिक नहीं होंगे और अमरीका उन देशों द्वारा लगाए गए शुल्कों का लगभग आधा शुल्क वसूलेगा। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 169 रन बनाए। गुजरात टाइटंस ने 170 रन का लक्ष्य 18 ओवर में हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही